ओम शांति। आदरणीय गीता दीदी जी का हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी को ज्ञान रत्नों से भरपूर करने आदरणीय गीता दीदी जी हम सबके समक्ष आए हैं और आपके क्लास का विषय है कि शिव व्रता ही शिव शक्तियां हैं। आज शिव से शक्ति लेने के लिए लोग स्थूल रूप में व्रत करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि वही परम पिता परमात्मा शिव की याद से एक व्रता होकर ही हम शिव की शक्ति ले सकते हैं। आदरणीय गीता दीदी जी, 14 वर्ष की अल्प आयु में ज्ञान से संबंधित प्रकाश में आई और 1972 से आपने विश्व कल्याण अर्थ अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आप प्रथम राजयोग शिविर गुजराती में कराने के निमित्त बनी। आपके माध्यम से राजयोग शिविर की शुरुआत हुई तथा आपकी राजयोग शिविर प्रचनों की विशेषता के कारण भारत के अनेकानेक प्रांतों में आपका योग शिविर कराने हेतु जाना हुआ। साथ साथ बड़े बड़े आध्यात्मिक मेलों के निर्माण तथा संचालन करने के भी विशाल अनुभव आपको प्राप्त हुए। 1969 से 1992 तक आपने गुजरात के भावनगर अमरेली सब जोन का संचालन किया और अनेक सेवा केंद्र खुलने के आप निमित्त बनी। 1993 से आप विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में रही। आपने 17 वर्षों तक यानी 2010 तक ज्ञान सरोवर एकेडमी परिसर में सेवाएं दी। ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर परम आदरणीय मनोहर दादी जी के सानिध्य में वहां के आंतरिक प्रशासन में जिम्मेवारी भरा सेवा कार्य आपने अदा किया। इसी दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपने भाग लिया। आप विद्यालय से संलग्न राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की बिजनेस और इंडस्ट्री विंग की मुख्यालय संयोजक है। अनेक विंग्स के विभिन्न विषयों पर आप अपना अनुभव युक्त वक्तव्य देते रहते हैं। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका तथा स्व प्रबंधन कोर्स की ट्रेनर हैं। आप अपने चिंतन लेख कथन से अखबारों व पत्रिकाओं व टीवी चैनलों के माध्यम से सेवा करती हैं। आप ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के राजयोगी भाई बहनों के सोन्नति कार्यक्रमों की बहुत ही प्रभावी शिक्षिका हैं। आपने 1991, 2006, 2008 और 2009 में विदेश भ्रमण किया, मुख्य रूप से अमेरिका, यूके, कनाडा, अफ्रीका के कई देशों व मॉरिशियस, बांग्लादेश में आपने सेवा यात्रा की तथा विदेश में परमात्मा का ज्ञान संदेश देने का कार्य किया। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय के शांतिवन परिसर में रहते हैं और अपनी अनुपम सेवाएं देते और योग तपस्या के शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाते हैं। दीदी जी के लिए दो शब्द कहूंगी, क्या बाप दादा के नयनों के नूर हो। आप बाप दादा के नयनों के नूर हो। आप ज्ञान योग से भरपूर हो। चेहरे में वही रूहानियत, बातों में वही मिठास है, नैनों में वही नूर और चलन में वही राज है। आज आप हमारे बीच पधारे, आज आप हमारे बीच पधारे, प्यारे बाबा का कमाल है, प्यारे बाबा का कमाल है। आदरणीय गीता देवी, पीछे माताएं जो बैठी हो सब सामने आ जाए।
ओम शांति। बाप दादा की सीजन का हर टर्न अपने आप में विशेष होता है और उसमें भी जो टर्न कोई ना कोई यादगार त्योहार वाला होता है तो हमें और स्वयं के पुरुषार्थ को चेक करने का मौका मिलता है। संगम युग में जो कुछ हम करते हैं उसी का यादगार भक्ति में बनता है। भक्ति में रीत रस्म से मनाते हैं और हम रीत रस्म से भी मनाते हैं परंतु ज्ञान सहित मनाते हैं। एक और यादगार भी देखते हैं और दूसरी और प्रैक्टिकल पुरुषार्थ भी करते हैं। तो ये टर्न अपने आप में विशेष है। सृष्टि चक्र की सर्वोत्तम घटना कौन सी है? वैसे तो हर क्षण ड्रामा में कुछ ना कुछ नया होता है। देवताओं का आना, धर्म स्थापकों का आना, महान आत्माओं का आना, लेकिन सृष्टि चक्र की सर्वोत्तम घटना साक्षात परमात्मा का सृष्टि पर अवतरित होना है। और आज ये टर्न बाबा के उस अवतरण की यादगार का टर्न है। एक क्षण आप सोचिए कि हमारे शहर नगर में कोई बहुत ही विश्व प्रसिद्ध नामी ग्रामी व्यक्ति आती है तो कितना उसका प्रभाव रहता है। अभी आप सोचिए कि स्वयं परमात्मा के अवतरण का यादगार त्योहार और प्रैक्टिकली हम बाबा के बच्चे परमात्मा अवतरण के साक्षी, उनके मिलन के आनंद को प्राप्त करने वाली आत्माएं और उसमें भी आज का दिन लौकिक रूप से, दुनियावी रूप से हम भारतवासी तो ज्यादा इन बातों में नहीं जाते हैं, लेकिन अब चूंकि पूरा विश्व ग्लोबल विलेज बन गया है और कम्युनिकेशन के माध्यमों से इतना नजदीक आ गया है कि एक दो के कल्चर का भी इंटरेक्शन होता है। तो वैलेंटाइन डे जो कहते हैं उस हिसाब से हम सबका प्यार भी एक बाबा से, तो दोनों चीजें हमें चेक करनी है कि जन्म जन्मांतर से जिसको हम पुकार रहे थे, बुला रहे थे, वो सन्मुख जब आता है तब हमारा प्यार उनसे कितना रहता है। किसी को आप बहुत निमंत्रण देते रहते और वो सच में जब आवे तब आप उसका कितना सम्मान, वैल्यू, उनसे प्यार, उनकी खातिरी और उनके साथ कितना आप रहते, वो इम्पोर्टेंट है। तो जिस बाबा को आत्मा आधा कल्प से पुकारती रही है, खोजती रही है, वो बाबा जब आए हैं तो हमारा उनसे प्यार कितना, और उस प्यार में हमारा समर्पण कितना, ये दोनों चीजें आज अपने आप में हमें चेक करनी है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि जब आप अपना सब कुछ बाबा को विल कर देते हैं तब आपको विल पावर प्राप्त होती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक शिवरात्रि से कनेक्ट करते हुए मैंने सोचा कि शिव शक्ति हम सबका लक्ष्य है, कल्याणमयी शक्ति बनना। हम लोगों को भी सेल्फ एम्पावरमेंट पर क्लासेस कराते हैं कि ज्ञान समझ फिर भी हरेक में कुछ न कुछ है, पर शक्ति, शक्ति का तीन मतलब है, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर, खुद के संबंध, सेल्फ रूलिंग पावर, और इससे अपने आप को ऐसा बनाना जो इंस्पायर कर सके। शक्ति माना दूसरे को कंट्रोल करना नहीं, पर शक्ति माना स्वयं ऐसा बनना जो दूसरों को इंस्पायर कर सके। जो बाबा मम्मा हमारी दादियों ने और बड़ों ने किया है कि उनको देखकर हमें और उमंग आता, हिम्मत आती, पुरुषार्थ बढ़ता। हम सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं, सद्ज्ञान हमें मिला है, सत्य ज्ञान स्वयं में ही एक शक्ति है। आज भी शायद मुरली में आया और शिव के संबंध में भी जो गायन है कि शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उन्होंने स्थूल बताया है। हम जानते हैं शिव बाबा का डमरू कौन है, ब्रह्मा बाबा है, क्योंकि ब्रह्मा मुख से बाबा वाच करते हैं। और अगम निगम के, ये निगम है साकार दुनिया, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, और वो अगम है इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड परम धाम। तो अगम निगम के भेद खोले माना स्थूल सूक्ष्म और मूल के सारे भेद राज बाबा खोलते हैं। जितना बाबा के सत्य ज्ञान की परख हमें आती है, आत्मा सत्य समझते ही शक्तिशाली बनने लगती। इसलिए अगर हमें शक्तिशाली बनना है, क्योंकि समय अनुसार बाबा हम सबसे इसी अवस्था की अपेक्षा करते हैं कि अब माया के कोई भी स्वरूप का और जीवन और संसार की कोई भी परिस्थिति का नेगेटिव प्रभाव हमारे पर न पड़े। माना कोई भी कारण, कोई भी बात चाहे व्यक्ति द्वारा सामने आती है या प्रकृति द्वारा आती है, वो हमें चलित न करे। हमारा पुरुषार्थ एक रस ऊंचा होता रहे। पिछले बार 25 दिसंबर वाली मुरली में भी बाबा ने हम सबका ध्यान खींचा था कि आप सब पुरुषार्थी हैं, चेकिंग करते हैं, स्वपरिवर्तन का प्लान भी बनाते हैं। ये तो बाबा ने हम सबको सर्टिफिकेट दिया, कैसे नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, चेकिंग नहीं करते हैं, ये सब करते हैं, पर कभी कैसा, कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी ढीले पुरुषार्थी। तो बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया था कि फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है, कभी भी होनी है, और इसके कारण हमारी निरंतर एकरस, सदा शक्तिशाली, श्रेष्ठ अवस्था होना जरूरी है। तो ये हम सब अपने आप में वही अब लाना चाहते हैं कि समझ है, पर समझ के अनुरूप स्थिति भी सदा हमारी रहे। इतने हम शक्तिशाली बन जाएं। अब वो शक्ति आत्मा में कैसे आती है, तो उसका पहला है कि सत्य ज्ञान की परख। बाबा के अनेक बच्चे ज्ञान में चलते हैं, पर यही सत्य है, जितना हम ज्ञान के एक एक पॉइंट सत्य है ये परखते हैं, समझते हैं, तो हमारे में शक्ति आती है, हम निश्चय बुद्धि बनते, उनका स्वरूप बनने के पुरुषार्थी बनते हैं। ये भी एक शक्ति है, हर कोई निश्चय बुद्धि नहीं होता, हर कोई पुरुषार्थी नहीं बनता, सत्य को समझने के बाद भी। तो सत्य ज्ञान सिर्फ जानना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है, परखना है। और जब वो परख आ जाती है कि यही सत्य है और कोई नहीं दे सकता है और केवल बाबा ही ये दे सकता है, अभी ही मिल सकता है, ये परख आने के बाद ऑटोमेटिक आत्मा में शक्ति आने लगती है, अलबेलापन, ढीलापन, आलस खत्म होने लगता है। उसके बाद जो बाबा ने मुरली चलाई थी कि विल करने से विल पावर आती, तो उस संदर्भ में कि सत्य परिचय मिलने के बाद बाबा से सर्व संबंध जोड़ना और उस एक की याद में रहना, जो पार्वती के लिए गायन है कि उसने सूर्य के सामने एक टक साधना की, ये उसका गायन है। तो कोई स्थूल सूर्य की बात नहीं, पर मन की आंख सदा ज्ञान सूर्य बाबा के प्रति, कोई चीज के प्रति लगन नहीं, कोई व्यक्ति संबंध के प्रति लगन नहीं, कोई परिस्थिति और घटनाओं के प्रति बुद्धि नहीं, लेकिन मन की आंख सदा एक बाबा के सामने। तो ये साधना जिसको बाबा कई प्रकार से वर्णन करते हैं कि अव्यभिचारी योग या अनन्य भाव, अनन्य भाव जो गीत में सुना कि मेरो तो एक दूसरो न कोई, ये जिगरी और प्रैक्टिकल जिसको बाबा नौधा योग कहते, नौधा भक्ति और ये नौधा योग। नौधा भक्ति में वो बताते हैं कीर्तन अर्चन सख्य भाव दास्य भाव आत्मनिवेदन, इस प्रकार से नौ प्रकार की भक्ति वो बताते हैं। पर उसका सिंपल अर्थ है कि अनन्य भाव वो योग है, वो योग है। तब तक योग का पुरुषार्थ है ना, हम कहते भी है आज बहुत अच्छा योग लगा माना, बस बाबा बाबा ही मन से होता रहा और कोई बात खींचे नहीं, वो याद आत्मा में शक्ति लाते, वो अनन्य भाव शक्ति लाते। और उसके बाद है कि उनका बन जाना, इसलिए शिव विवाह गाया हुआ है और किसी के साथ ये नहीं गाया हुआ है, माना आत्मा का शिव को वर जाना, स्वयं वर कहते हैं ना, स्वयं उसको चुन लेना। तो आत्मा अंदर से बाबा की बन जाए, उन पर फिदा हो जाए, उनके उनको जीवन के लिए चुन ले, साथी बना ले। फिर हमारा बुद्धि का भटकना समाप्त हो जाता है, आत्मा में वो शक्ति आ जाती है कि मुझे बाबा से ही सब कुछ प्राप्त करना है और किसी भी आत्मा से अपेक्षा नहीं रखनी। कोई भी बात आई, समय आया, बाबा के तरफ ही बुद्धि जाए। इसलिए सर्व संबंध क्यों कहते हैं, वो बाबा मेरा सब कुछ सर्वस्व और बाकी सब निमित्त मात्र। अब हमें अगर अपने पुरुषार्थ में तेजी लानी है, तीव्रता लानी है और शक्ति भरनी है, तो हमारे पुरुषार्थ में, योग तपस्या में, ज्ञान पढ़ाई में, सेवा सहयोग में ये क्वालिटी लानी कि वो ही सब कुछ। इसमें टाइम बढ़ाने की बात नहीं है, टाइम तो जितना भी मिलता है हमारा बाबा के लिए है, पर नेचुरली एवरेज प्रतिदिन 3-4 घंटे ही हमें मिलते हैं, एवरेज की बात मैं कर रही हूं। टाइम तीव्र पुरुषार्थी माना 2 घंटे करते हैं तो 4 वो बात नहीं है, पर क्वालिटी बढ़ाना है, अपने पुरुषार्थ की क्वालिटी को अच्छा बनाना, उसमें ये बात आती है कि एकटक साधना, अनन्य भाव, नौधा योग, अव्यभिचारी बुद्धि योग, वो हमें अपने पुरुषार्थ में लाना है। और भी एक जो गायन है शिव का, अर्ध नारीश्वर कंबाइंड स्वरूप, शिव और शक्ति कंबाइंड स्वरूप, और शक्ति आत्मा के लिए कहा गया है। कंबाइंड हर बात में बाबा, हर क्षण हर स्थान मेरा साथी बाबा, वो है अर्ध नारीश्वर की मैं उनसे जुड़ी हुई हूं। ये चीजें शक्तिशाली बनाती है, इसलिए उसको बाबा शिव व्रता कहते हैं, पिता व्रता कहते हैं, पति व्रता जो कहते हैं कि बाबा सब कुछ है, पिता भी है, साथी भी है, सब कुछ है। तो बाबा से हम शिव व्रता माना, नजर भी किसी में न डूबे, बुद्धि भी किसी में न डूबे, ऐसा जिगरी प्यार, अनन्य भाव, उसको कहते हैं शिव व्रता। इतनी शक्तिशाली वृत्ति भी बन जाए, कर्म में चलितता नहीं है, वो तो हमारी प्रथम धारणा हो गई कि अब हमें बाबा के बनने से या बनने के बाद अब कोई हमें बाबा से अलग नहीं कर सकता, भागंती नहीं कर सकता, हम बाबा को छोड़ेंगे नहीं। इतनी शक्ति हम ब्राह्मणों में आ गई है कि अब हम कहीं और भटकेंगे नहीं, कहीं और बुद्धि लगेगी नहीं, हम ज्ञान को छोड़ेंगे नहीं। पर ज्ञान को पकड़कर क्या करना है वो बात है। अब हम भागंती नहीं होंगे, बरोबर है, पर बाबा के बनकर बाबा के रहकर हम क्या करें, वो क्वालिटीज लाना कि जो उनको ही याद करना, जो उनको पसंद है वही श्रीमत से चलना, मन समर्पित कर देना, मनमत नहीं श्रीमत। अब जो करना है वो ये सब करना है कि वो कहे वो ही करना, उनको जो अच्छा लगे उनके जो डायरेक्शन है वो ही मानना। ये हमारी दृढ़ता, व्रत माना दृढ़ता, प्राण प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प, भक्ति में सोचते हैं ना कि भी व्रत लिया है टूटना नहीं चाहिए, भगवान कोई नाराज नहीं होता है, पर अगर व्रत टूटता है तो हमारी अपनी शक्ति ही खत्म होती है। आप देखो जो भी धारणाएं बाबा ने बताई है उसका पालन निरंतर है तो आपका विल पावर बढ़ता है। इसमें क्या है, खा लिया तो क्या है, आज नहीं उठे तो क्या है, आज क्लास नहीं किया तो क्या है, वो चीज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कोई तुरंत प्रभाव हमारे पर आ जाएगा, परंतु एक संकल्प को तोड़ना, खुद के विल पावर को खत्म करना, क्योंकि फिर से उस लेवल तक मन को बनाने में फिर वापस पुरुषार्थ करना पड़ता है। समझो जैसे हम पुराने हो गए हैं, वर्षों से चल रहे हैं, तो कई बार छोटी छोटी धारणाएं नियम मर्यादाओं के लिए हम सोचते हैं कि अब इसमें कोई ढीलापन आता है तो वो हमें कोई असर नहीं करता है। मान लो एक बार कोई फिल्म देख लिया या टीवी प्रोग्राम देख लिया या कुछ खा लिया या सो गए, कोई आपको प्रभाव नहीं लगेगा, पर वास्तव में उसका प्रभाव हमारी स्थिति और विल पावर पर आता है। आज अगर अन्न शुद्धि का एक संकल्प में पालन कर सकती हूँ तो हमारे जीवन का ऊंचे से ऊंचा संकल्प संपूर्ण निर्विकारी बनने का, उस मंजिल तक हम पहुंच सकेंगे। अब एक छोटे से संकल्प को अगर हम बना के नहीं रख सकते हैं, तोड़ देते हैं घड़ी घड़ी, तो इतनी ऊंची मंजिल पर हम कैसे पहुंचे। तो जो हमारी बेसिक मूल फाउंडेशन की बातें हैं, वास्तव में फाउंडेशन पर ही तो सारा भवन खड़ा रहता है। ऐसे जीवन की जो प्राथमिक हमारी धारणाएं हैं, बातें हैं, जो ज्ञान में आते ही हम अपने जीवन में पक्की करते हैं, उसी के आधार पर ही तो ये ब्राह्मण जीवन और ये रूहानी स्थिति है। कोई बड़ा मकान बनाने के बाद फाउंडेशन को ढीला करे तो क्या होगा। चलो आपने इतना बड़ा मकान बना लिया, माना आप इतने बड़े ब्राह्मण बन गए, अनन्य बन गए, महारथी बन गए, सर्विसेबल बन गए, पुराने बन गए, जिम्मेवार बन गए, ये सब टाइटल मिल गए, पर अगर हम बेस को ढीला अब करने लगे तो भविष्य क्या। इसलिए कितना भी हायर लर्निंग हम करते हैं, आगे से आगे ऊंचे से ऊंच बढ़ते हैं, एक्चुअली वो बेसिक को लेके ही बढ़ते हैं। जो बेसिक है हमारा वो कभी हमें ढीला नहीं करना होता। और ही जो हमने त्याग किया है वो इतना नेचुरल रूप से जीवन में आ जाए कि हमें वो इच्छा या संकल्प ही ना उठे उस दिशा। तो ये जो अंदर अंदर खुद की एम्पावरमेंट करनी है उसके लिए हमें खुद ही खुद से बात करनी है और गहराई से हर बात को समझनी है। तो अभी समय अनुसार हमें वो चेक करना है। आज भी बाबा ने कहा कि अपने आप को देखो कि हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। एक है कि चिंतन, एक है ज्ञान मंथन, पर याद मुझे आती रहे, याद बनी रहे, वो स्टेज उसमें आता है बाबा से अनन्य प्यार, अनन्य भाव, कि वो जब भी मैं फ्री होती हूँ तब मैं क्या करती हूँ। आप देखो अपने आप, तब मैं क्या करती हूँ, मुझे कौन सी इच्छाएं होती। इससे हमें पता चलता है कि मेरा सच में बाबा से लगाव झुकाव कितना है। एक है कि ऑफिशियल जो रूटीन हमने बना दिया वो समय पर करते रहना, वो अच्छी बात है, पर एक है कि जब हम फ्री है, हमारे सामने कोई पुरुषार्थ का प्रोग्राम संगठन वो बात नहीं है, हम अकेले हैं और फ्री हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। उस समय हमारे मन की गति, दिशा, इच्छा क्या होती है। तो इससे हमें खुद का पता चलता है कि मेरा एक नेचुरल आकर्षण बाबा के प्रति कितना है। उस याद का आनंद कितना मिलता है। हमने दादियों के जीवन में देखा, बड़ी दादी में भी और अब हमारी जो दादियां हैं, सब में मैंने देखा कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं उनका जो बाबा के लिए अनन्य भाव है वो बढ़ता जा रहा है। माना घंटों वो उस याद के आनंद में बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। फिर प्रवृत्ति कम, संबंध संपर्क कम होते हुए भी आत्मा याद के आनंद में रहती, वो हमारा बढ़ता जाए। एक समय था, जरूरत थी, हम विस्तार में गए, अनेकों के संपर्क में आए, अनेकानेक सेवा प्रवृत्तियां की, वो जरूरी था। अब के समय अनुसार समेटते जाना, सार में टिकना और उस याद के आनंद में रहना, तो जितना अंदर निरंतर बाबा का खिंचाव, स्मृति, प्यार, वही चेहरे और चलन से अपने आप दूसरों को अनुभव होता जाता है। आज दुनिया में भी क्या है, जो चीजें हैं उसे ही वो क्वालिटी बना रहे हैं। वही मोबाइल है, वही कार है, वही कंप्यूटर है, वही चीजें, वही है जो खोजी गई, पर उसको और क्वालिटी, और रिफाइन, और माइक्रो, और ज्यादा फैसिलिटीज वाली वो बना रहे हैं। हमें भी अब नया कुछ नहीं खोजना है, जो सत्य है वो हमें मिल चुका है, और उस सत्य को जीवन में लाने के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं, पढ़ाई, अभ्यास, सेवा, सहयोग, ये त्याग, जो कुछ कर रहे हैं उसको हमें क्वालिटी बनाना है। वो हमें चेक करना है, उसको कहते हैं कि पिताव्रता, पतिव्रता, शिवव्रता, माना उस संकल्प धारणा लगन में पूरा मगन, दृढ़ता, तब आत्मा शक्तिशाली। बाबा कहते ना, ऐसा बनने से जमा जल्दी होता है, और जमा माना मेरा संकल्प, वाणी, जो मेरी भावना, मन की जो भी उत्पत्तियां हैं, मुझ आत्मा की जो ये सारी उत्पत्तियां हैं, भाव, भावना, विचार, वाइब्रेशन, वृत्ति, स्मृति, ये सब मन की, आत्मा की सारी सूक्ष्म जो उत्पत्तियां हैं, वो क्वालिटी बनने से हम शक्तिशाली बने। अगर खुद को जैसा बाबा कहते हैं अचल, अडोल, एक रस, जो बाबा कहते हैं संपन्न, संपूर्ण, समान बाप, है ना, ये सारी चीज अगर सच में हम बनना चाहते हैं तो हमें ये अंदर अंदर स्वयं के ब्राह्मण जीवन के जो पुरुषार्थ है उसको दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनाना है, और उसके बाद आता है कि प्रैक्टिकल समर्पण कितना। वो संबंध और स्नेह की बात हुई, जिससे मन और बुद्धि में एकाग्रता, एक रसता आती है, पर हमारा बाबा से केवल मानसिक संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में जिससे भी हमारा स्नेह और सर्व संबंध बनता है तो ऑटोमेटिक बात आती है फिर कुर्बान, फिदा, फना, समर्पण, ये सब चीजें आती हैं। जो हमारे पास है स्थूल और सूक्ष्म, वो कितना बाबा के प्रति कुर्बान। बाबा मेरा बरोबर है, पर मैं बाबा की वो कितना प्रैक्टिकल में, भक्ति में हम कहते हैं ना कि गाते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर प्रैक्टिकल जब अर्पण करने की बात आती है तो मेरा पर तेरा भी मेरा ऐसा कर देते हैं ना। बाबा पर अधिकार करते हैं ना कि बाबा आप तो हमारे हो ना, आप तो हमें मदद करो, आप हमारा ये ठीक करो, तो कितना हम अधिकार लगाते। पर कर्तव्य हमारा भी है, और ड्रामा में ये नियम है कि ऐसे ही नहीं मिल सकता है बाबा से। बाबा कहते ना, हिम्मत करो तो मदद मिले, याद करो तो याद मिले, तुम बाबा के साथी बनो तो बाबा सारथी बने, तुम कखपन लगाओ तो लखपन मिले, कुछ भी मेरा ना रहे तो सब कुछ प्राप्त हो। क्योंकि ऐसे ही देना हो फिर तो भगवान सबको देवे, फिर तो उसे सबको देना पड़े ना, पुरुषार्थ की बात ही नहीं रहती। पर बाबा को देना है और वो दे ही रहा है, पर हमें अपने कर्म के बल से खींचना है, और वो मेरा कर्म है प्रैक्टिकल में फिदा होना, मेरा समय लगे, तन लगे, मन लगे, धन लगे, मेरे संबंध संपर्क काम में आवे, मेरी पद प्रतिष्ठा सेवा में उपयोगी बने, मेरी गुण कला विशेषता बाबा के कार्य में लगे। प्रैक्टिकल समर्पण कितना, वो हमें चेक करना है। तो ऑटोमेटिक योग्यता, पावर, प्राप्तियां, अनुभूतियां सब हमें होने लगता है। हमें भगवान से अपना संबंध बनाना है, हिसाब बनाना है। जैसे जिससे हिसाब किताब है तो मन वहां खींचता है ना, मन खींचता है ना, ऑटोमेटिक हिसाब किताब मन को खींचता है। तो मुझे भी बाबा के साथ इतना जमा करना है, इतना हिसाब बना लेना है कि बाबा ऑटोमेटिक याद आता ही रहे, मेहनत ना लगे। जैसे वो कहते ना कि मैं इतनी तुमको भगवान याद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी दुआ मांगता हूँ, आप क्यों नहीं तुरंत जवाब देते। तो उसमें बताते हैं ना कि तुम भूले करते हो, उनकी सजा भी तो मैं तुरंत नहीं देता हूँ ना, हर चीज समय पर उसका फल आता है। बाबा ने नहीं कहा कल पहले जिसने बीज बोया है वो अपने आप बोएंगे, माना प्यार ऐसे ही नहीं होता है, प्यार की निशानी ही ये है कि आप उसको टाइम देंगे, धन देंगे, चीजें उनके लिए लगाएंगे, मन लगाएंगे, आपका जो कुछ है वो उनके साथ शेयर होने लगेगा, उनके प्रति लगने लगेगा, और तब मन वहां टिकता है। सिर्फ शुष्क सुखा सुखा प्यार करने से मन नहीं लगता है, मन ठहर जाए, ये जो बाबा कहते हैं वो तब होगा जब प्रैक्टिकल में प्यार, जो कुर्बानी दादियों के अनुभव में, ब्रह्मा बाबा के अनुभव में, सब महारथियों के अनुभव में, और आप सबका भी अनुभव होगा कि जितने अनन्य भाव से बाबा के स्नेही सहयोगी साथी हम बनते हैं, तो योग अपने आप बाबा से लगता है, सहज महसूस होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वो जो हमारा जमा होता है बाबा के पास, वो एम्पावर करता है। कहते हैं ना, जिसका अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है, वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, नुकसान हो जाए, बीमारी का खर्च आ जाए, तो वो घबराएगा नहीं। उनको पता है मेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस जमा है, मैं इस परिस्थिति को पार कर सकूंगा, वो घबराएगा नहीं, चिंतित नहीं होगा। इस प्रकार हमने निर्संकल्प होकर एक धक से जिगरी जितनी बाबा को मदद की होंगी, हम भी निश्चिंत होंगे कि हमने भगवान को हवा में प्यार नहीं किया है, प्रैक्टिकल में किया है। हमने प्रैक्टिकल में किया है, तो वो समर्पण कहो, वारी जाना, कुर्बान जाना, फना होना, फिदा होना, उस आत्मा में ताकत आती है। इसलिए कहते हैं त्याग में शक्ति है, भोगने में शक्ति नहीं है। भोगने में आत्मा बोझिल बनती है ना, हम लेते रहे सबसे, तो आत्मा भारी होगी, क्योंकि ऋण चढ़ता जाता है, खुशी अनुभव नहीं कर सकते। पर जितना हम अच्छा करते हैं दूसरों के लिए, बाबा के लिए, सेवा के लिए, कल जैसे बाबा ने कहा था कि मेरे सदके तुम पवित्र बनो, माना मेरे खातिर भी ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, फॉर सेक ऑफ बाबा, बाबा के खातिर मुझे, जैसे घर के पांच सभ्य के खातिर, चार सभ्य के खातिर हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, ध्यान देते हैं, जिम्मेवारी समझते हैं, ऐसे बाबा के लिए, ऐसे बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के कार्य के लिए, तब आत्मा बंधती है भगवान से। वो प्यार का बंधन, सुख का बंधन तब बनता है। और लास्ट है कि बाबा से भी जो हमें प्राप्त हुआ है, ये तो चलो जो हमारे पास है दुनियावी रूप से, धन साधन, जमीन जायदाद, संबंध संपर्क, पोस्ट पोजीशन, गुण कला विशेषता, वो हमारे पास जो है वो हम लगाते हैं। पर लास्ट है कि बाबा से जो हमने पाया है बाबा से जो मुझ आत्मा को मिला है अलौकिक संपदा शांति सुख आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति खुशी दुआ ये जो कुछ हमें मिला है इस अलौकिक जीवन में वो भी बांटना आत्माओं को देना वो भी देना सेवा के खातिर कोई त्याग है ना एक है कि एक्सेस है मेरे पास और वो मैं सफल करती मुझे 5 साड़ी की आवश्यकता है और 10 है और मैं 2-4 किसी से को देती हूँ तो वो अलग है वो दान है त्याग है कि 4 की जरूरत है 4 है फिर भी 1 देती हूँ 2 लगा देती त्याग बाबा को काम में आ जाना आत्माओं का उपयोगी बन जाना अपनी अलौकिक संपदा आत्माओं को देना जिसको बाबा आजकल कहते मनसा सेवा हर आत्मा को प्राप्ति कराना चलन चेहरे से देना ये करते हैं तो हम शक्तिशाली बनते तब हमारे में विल पावर आती जो हम सोचते हैं ना कि दादियों में इतनी शक्ति कैसे है उन्होंने दृढ़ता कैसे रहती हम घड़ी घड़ी क्यों हिल जाते हैं डिले हो जाते हैं या इतनी दृढ़ता क्यों नहीं रहती क्योंकि वो शक्ति समर्पण से आती इसलिए विल करें बाबा को विल करना माना लगा देना बाबा के प्रति समर्पण करना मरने के बाद नहीं जीते जी जो चीज आपकी रही नहीं वो आप बाबा को कहते हैं कि बाबा आपकी है ना जब आपने शरीर छोड़ दिया फिर तो आप मालिक नहीं है ना उस चीज का तो मेरे मरने के बाद नहीं जीते जी मेरे अपने हाथों से तो विल करना जीते जी चलो ऐसी है चीजें कि मुझे जितना जरूरी है उतना ही मेरे पास है और मैं विल करती हूँ कि मेरे मरने के बाद ये भी बाबा का वो एक अलग चीज है पर जीते जी करने के बजाय जीते जी मैं खुद भोग लूं और मेरा अधिकार न रहे तब मैं कहूं कि बाबा को तो उस दो में भी अंतर है तो जितना विल करते हैं बाबा के नाम लगाते हैं उतना विल पावर आती है जितना अनन्य मन बुद्धि से हम बनते हैं और प्रैक्टिकल तक वो प्रभाव लाते हैं शिव व्रता जो कहा इससे मैं आत्मा शिव शक्ति रूहानियत की शक्ति शुद्ध चरित्र की शक्ति श्रेष्ठ कर्म की शक्ति दिव्य संस्कार की शक्ति ये ऑटोमेटिक हमारे में आएगी और बाबा कहते हैं कि अंत में जब जरूरत नहीं होगी तब कोई लगाने आएंगे तो बाबा थोड़ी लेंगे बाबा कहते हैं ना क्योंकि ये तो हिसाब है ना हम देंगे तो उसका रिटर्न भी बाबा को करना है इसलिए जब जरूरत है उस समय आवश्यकता के समय निर्संकल्प होकर एक धक से बाबा का साथी बनना, तन से मन से धन से जिस भी रीति से आवश्यकता है उसके लिए बाबा ने कहा है कि मैं अंत तक मदद करने के लिए बंधा हुआ। तो इन सब बातों का योग की स्थिति आत्मा की शक्ति से संबंध है। इन सब बातों का संबंध है। मेरे कहने का सार यही है कि सिर्फ ज्ञान योग का मानसिक बौद्धिक पुरुषार्थ नहीं, प्रैक्टिकली बाबा के लिए उपयोगी बनना, बाबा के लिए कुर्बान जाना, बाबा के लिए अपना उपयोग कर देना, ये भी आत्मा में शक्ति भरता है। और अब ऐसे शिव शक्ति, ऐसी कल्याणमयी शक्ति, रूहानी शक्ति, योग शक्ति, संकल्प शक्ति, जो आप कहो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा बनने की हमें आवश्यकता है और जरूरत भी। तो शिवरात्रि का चरण है और आज बाबा के साथ के प्यार का दिन है, तो उस प्यार में हम अपने समर्पण को भी चेक कर लें। ओम शांति।